آج کل
प्रिय श्रोताओं, आतंकवाद के बारे में एक संक्षिप्त श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं, जिसको तीन कड़ियों में पेश करेंगे। इसमें आतंकवाद से मुकाबले में ईरान की भूमिका की चर्चा की जाएगी। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
निसंदेह आतंकवाद वर्तमान विश्व की ज्वलंत समस्या है। इसके मुकाबले के लिए वैसे प्रयास तो किए जा रहे हैं, किंतु विभिन्न देशों की ओर से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के बारे में जो नीति अपनाई जा रही है, उसके कारण आतंकवाद से संघर्ष का विषय जटिल समस्या में बदलता जा रहा है। वर्तमान समय में विश्व के अलग अलग भागों में कुछ ऐसी अप्रिय व दुखद घटनाएं घट रही हैं, जो आतंकवाद के बारे में अपनाए जाने वाले दोहरे मापदंडों का ही परिणाम है। वास्तविकता यह है कि कुछ देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आतंकवाद के बारे में दोहरा मापदंड अपनाए हुए हैं।
यदि हम इस बारे में सोचे तो हमारे मन में दो प्रश्न उठते हैं। एक यह कि आतंकवाद से मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ कमियां हैं, जिनके कारण यह अभिशाप तेजी से फैल रहा है, या यह कि इस संबंध में कुछ और चुनौतियां हैं जो आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लागू होने में बाधा बन रही है। ये वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम कार्यक्रम में ढूंढने के प्रयास करेंगे।
ऐसे में कि जब वैश्वीकरण की बातें हो रही हैं और संसार सिकुड़ता जा रहा है, उसे आतंकवाद जैसी बुराई का इतने व्यापक स्तर पर सामना है जितना इससे पहले कभी भी नहीं रहा। अनियंत्रित आतंकवाद इस समय पूरी मानवता के लिए खतरे में परिवर्तित हो चुका है। इस बढ़ते आतंकवाद के कारण मनुष्य बहुत से स्थानों पर सुरक्षा जैसे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित होता जा रहा है। इसी आतंकवाद ने सरकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरे में डाल दिया है। देशों की संप्रभुता के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आतंकवादियों की कार्रवाई से अब कोई व्यक्ति, गुट, देश, समाज, स्थान या क्षेत्र सुरक्षित नहीं बचा है। इसका एक कारण यह भी है कि आतंकवाद को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। आतंकवाद को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया, जिसके कारण उसके विरुद्ध संघर्ष करने में समस्याएं आ रही हैं।
इस समय आतंकवाद कोई राष्ट्रीय खतरा नहीं रहा है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा बन चुका है। आतंकवादी विदेश में सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं, विदेश से ही उनको आदेश दिए जाते हैं, विदेश से ही उनको हथियार भेजे जाते हैं, फिर आतंकवादी कार्रवाइयां करने के बाद वे अपने संरक्षकों के बताए स्थानों पर छिप जाते हैं। आतंकवाद के बारे में दोहरे मानदंडों को इस समय स्पष्ट रूप में पूरे संसार में देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, पश्चिमी देशों की ओर से प्रतिबंधित हथियारों का आतंकवाद के समर्थकों को बेचा जाना, जैसे ज़ायोनी शासन और सऊदी अरब, सीरिया, इराक, यमन, अफगानिस्तान और इसी प्रकार के देशों में आतंकवाद का समर्थन करने वालों के पिट्ठुओं की कार्रवाइयां। इन देशों में आतंकवादी कार्रवाइयों के कारण हजारों लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। आतंकवादी कार्रवाइयों ने ही न जाने कितने लोगों को अपने घर छोड़कर पलायन करने पर विवश किया। यह लोग अलग अलग देशों के शरणार्थी शिविरों में बहुत ही बुरी परिस्थितियों में रह रहे हैं। अगर हम गौर करें तो इस परिणाम तक पहुंचेंगे कि पश्चिम, विशेषकर अमेरिका, अपने वर्चस्ववादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आतंकवादी गुटों के समर्थन को वरीयता देता है।
इस दौर में, जिसे तरक्की और विकास का दौर कहा जाता है, तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें आतंकवाद के विस्तार में प्रयोग किया जाता है। जिन चीज़ों को मानव विकास और प्रगति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी का दुरुपयोग करते हुए आतंकवादी उन्हें आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर और इसी प्रकार की अन्य आधुनिक चीज़ें। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके आतंकवादी अलग अलग स्थानों पर जब भी चाहते हैं आतंकवादी कार्रवाइयाँ करते हैं।
आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली आतंकवादी कार्रवाइयों के दुष्परिणामों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आतंकवादी गुट दाइश ने सन 2016 में विश्व के विभिन्न हिस्सों में 1141 आतंकवादी हमले किए। इस प्रकार से दाइश के आतंकवादियों ने हर महीने औसतन 95 आतंकवादी कार्रवाइयां अंजाम दी। एक पुश रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और इराक में आतंकवादी कार्रवाइयां करने के लिए दुनिया के 100 देशों के 30,000 आतंकवादी गए थे, जिनमें से बहुत से अब भी इन देशों में मौजूद हैं।
इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है और उसे किसी देश तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये वो बुराई है जो पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुकी है और इसने आदमी से चैन और सुकून छीन लिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकल्प की आवश्यकता है। ऐसा संघर्ष है जिसमें हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होकर काम करना चाहिए।
बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आतंकवाद से मुकाबले में पश्चिम का व्यवहार खुल्लम खुल्ला दोहरे मानदंडों पर आधारित है। इसमें खुला विरोधाभास पाया जाता है। विडंबना यह है कि स्वयं पश्चिम को भी आतंकवाद से खतरा है, किंतु इसके मुकाबले के लिए उसने दोहरा मापदंड अपना रखा है। इससे पता चलता है कि पश्चिम आतंकवाद से संघर्ष के विषय का प्रयोग एक हथकंडे के रूप में कर रहा है। अफसोस इस बात पर है कि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष की राग अलापने वाले ही इसमें बिल्कुल गंभीर नहीं है, जबकि वे स्वयं को संघर्ष के ध्वजवाहक के रूप में पेश कर रहे हैं।
इस विषय को समझने के लिए हमें मध्य पूर्व पर एक नज़र डालनी होगी। मध्य पूर्व के कुछ देशों ने वर्चस्ववादी शक्तियों के साथ मिलकर पिछले 3 दशकों से पश्चिम एशिया को तनाव का केंद्र बना रखा है। यही विषय इस क्षेत्र के अस्थिर होने और आतंकवाद के बढ़ने का कारण बना है। इस समय मध्य पूर्व बारूद के ढेर में बदल चुका है। मध्य पूर्व के देशों में इस्लामी गणतंत्र ईरान वो देश है जिसने पिछले 1 दशक से आतंकवाद के विरुद्ध गंभीरता से संघर्ष आरंभ कर रखा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में काफी गंभीर है।
आतंकवाद से मुकाबले के लिए विश्ववासियों को सबसे अधिक अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ से है। उसको चाहिए कि वह पूरी गंभीरता के साथ उससे मुकाबला करे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ही विश्व की वह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो इस बारे में कुछ कर सकती है। सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के बारे में कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, जैसे प्रस्ताव क्रमांक 1267, 1373, 2178 और 2179 इत्यादि। इन प्रस्तावों में प्रस्ताव क्रमांक 1373 विशेष महत्व का स्वामी है। इस प्रस्ताव में आतंकवाद से मुकाबला करने वाले देश के संबंध में बात कही गई है। सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव के अनुसार सुनियोजित या संगठित आतंकवाद से मुकाबले के लिए 3 रास्ते अपनाए जा सकते हैं। पहला, आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करना। दूसरा, आतंकवादियों के लिए हथियार भेजने पर पाबंदी। और तीसरा, आतंकवादियों की आवाजाही पर रोक। श्रोताओं, इनके बारे में हम आपसे अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सुनना न भूलिएगा।